SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्तों में तनाव का साया बरकरार है। दोनों ही देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में भारत ने संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों से निपटने में कनाडा के तरीकों पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कनाडा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े लोगों को प्रत्यार्पित नहीं कर रहा है।
लॉरेंस बिश्नोई के गैंग और अन्य गैंग के बारे में, सिंडिकेट्स के बारे में हमने कनाडा से कई साल पहले और हाल में भी उनको बताया है, उनसे प्रोविजनल अरेस्ट का रिक्वेस्ट किया है। अब तक उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है, ना कोई अरेस्ट किया है। और हम लोग तो बार बार ये बात कहते रहे हैं कि इतने सारे लोग जो जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ करते हैं, जो अलगाववादी ताकतों को जो बढ़ावा देते हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी तक इस मामले पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में के को आगे लाके वो कहते हैं कि ये फ्रीडम स्पीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्रत्यर्पण को लेके अब मैंने बताया जैसे कि 26 एक्सट्रेडिशन केसेस पेंडिंग हैं।
कनाडा में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर रणधीर जायसवाल ने कहा,
वहाँ पर करीबन 17 लाख 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग भारतीय नागरिक भी हैं, उनका सुरक्षा अहम है। वहाँ पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा वहाँ की सरकार के हाथ में है और हम लोग का ये अपेक्षा है कि वहाँ की सरकार उनको सबको सुरक्षित रखेगी।
आपको बता दें कि कनाडा ने अपने नागरिक और खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। पिछले साल हुई इस हत्या के बाद से ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव जारी है। इधर खालिस्तानी समर्थक गुरपत वंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में भी भारत सरकार पर सवाल उठाया गया है। यह सवाल सीधे अमेरिकी सरकार की तरफ से उठा है। अमेरिकी नागरिक पन्नू को भारत आतंकी मानता है। हरियाणा में नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। भाजपा विधायक दल के नेता नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही उनके अलावा 13 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को आए विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा ने बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस पार्टी को यहां उम्मीद के उलट हार का सामना करना पड़ा था। नई मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा,
अगर मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, 120 दिन का चुनाव का समय था, हर मुकाम पर मैंने कहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के समर्थन के और सहयोग के सरकार बनाएगी, जो कि सच भी साबित हुआ। अगर मैं देख सकता हूं तो ये क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ये जनता में रहते ही नहीं, हम जनता में रहते हैं, हमें जनता के नब्ज देखने आती है और इनको जनता की नब्ज नहीं पता। और जिस डॉक्टर को जनता की नब्ज, मरीज की नब्ज ना देखने आती हो, उसको अपना क्लिनिक बंद कर दे।
गुरुवार को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की एक बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय विकास पर चर्चा हुई। बैठक के बारे में बताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा,
तो मैं समझता हूं कि यह बैठक 5 घंटे जो चली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत ही सार्थक बैठक और देश को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर, बारीकियों पर चर्चा हुई। और मैं ये भी कहूंगा, जैसा कि हम सबका ऑब्जर्वेशन बना और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा भी, कि नॉन कांग्रेस एक कॉन्ग्लोमरेशन इतना बड़ा जो पहली बार इस तरीके से देश की प्रगति को अपने दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए एक रिजॉल्व करके आगे बढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि इस बैठक से।
जेपी नड्डा ने बताया कि बैठक में 6 प्रस्ताव पारित किए गए हैं।
कुल मिलाकर इस कॉन्फ्रेंस में 6 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी ने रखा, वह है हरियाणा का जो जीत प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों के कारण और जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में झूठ को फैलाने का विपक्ष ने प्रयास किया था, इंडिया अलायंस ने प्रयास किया था, उसको मुंहतोड़ जवाब मिला है। किसानों का साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिला, आशीर्वाद मिला।
और अब चर्चा एनडीए शासित राज्य बिहार की, जहां जहरीली शराब के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार को घेरा है। राज्य के सारण, सिवान और गोपालगंज जिलों में जहरीली शराब पीने के चलते 50 से अधिक लोगों की मौत होने की खबर है। हालांकि यह आंकड़ा आधिकारिक नहीं है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस बारे में कहा,
जहरीली शराब से को लगता है कि 50 से ज्यादा लोग मर गए और अभी नहीं जाने उतना ही लोग कम से कम अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोगों की आंखें चली गई, जो आहत हुए हैं, जिन जो नहीं रहे उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यहां से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि शराब नीति पर फिर से उनको पुनर्विचार करना चाहिए। एक तरफ तो पूरा शराब बंदी है बिहार में और दूसरी तरफ जहरीली शराब से हर साल सैकड़ों लोग चले जाते हैं।
आपको बता दें कि शराब की खरीद और बिक्री राज्य में कानूनन अपराध है। इसके बावजूद इस तरह के हादसे होने पर विपक्ष भड़का हुआ है। इस बीच राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।